हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 18 एंड 19। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतो मानसराज हंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम् रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानि। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांगपत क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद् गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकीं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 18। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत उवाच अहो वयम् जन्म भृतो द्यःस्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यमाधिम् विधिनोति शीघ्रम् महत्तमानम् अभिधानयोग अहो वयम् जन्म मृतोद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यमादिम् विधुनोति शीघ्रम् महत्तमानम् अभिधानयोग अहो वयम् जन्म मृतोद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यमादिम् विधिनोति शीघ्रम् महत्तमानम् अभिदानयोग। शब्दार्थ सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा अहो कैसे हम यानी वयम यानी हम जन्म मृत यानी जन्म को प्राप्त अद्य आज ह स्पष्टतया आस्म हो चुके हैं वृद्धानुवृत्तिया यानी ज्ञान में बरिचड़े हुओं की सेवा करने से अपि यद्यपि विलोम जाता मिश्र जाति में जन्म दौष्कुल्यम जन्म जात अयोग्यता आदिम कष्ट विधुनोति यानी शुद्ध करती है शीघ्रम तुरंत ही महत् तमानम अर्थात महानों का अभिधान वार्ता यानी वार्ता और योगम यानी संबंध बंधन। अनुवाद श्री सूत गोस्वामी ने कहा हे ईश्वर यद्यपि हम मिश्र यानी संकर जाति में उत्पन्न हैं फिर भी हमें उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो जाता है जो ज्ञान में बड़े चढ़े हैं ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जो है वो क्योंकि उनको ऋषियों ने बहुत बोला था कि हमें आपके मुखारविंद से भगवान की कथाओं को श्रवण करना है आप तो भगवान के बहुत ही प्रिय हो और अत्यंत ही सुंदर रीति से कथाओं को श्रवण करा रहे हो तो हमारी एक ही इच्छा है कि हम आपके द्वारा भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहते हैं तो हम यथारूप में वही कथाएं जो कि परीक्षित महाराज कौशिला, सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी वो आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं क्योंकि वो अनंत की कथाएं हैं और पूर्ण होने के कारण वो क्योंकि भक्ति योग से पूर्ण है इसलिए शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय होती हैं। तो हम बड़े उत्सुक हैं आपके द्वारा उन कथाओं को श्रवण करने के और आप ही योग्य हैं, आप ही सुना सकते हैं इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं। जब इतनी प्रशंसा सूत गोस्वामी जिनका नाम था उग्र शर्मा, जब उन्होंने अपनी इतनी प्रशंसा सुनी तो उनको बहुत ग्लानी हो रही है। वो कह रहे हैं अहो वयम जन्म मृत्योध्यास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता, यानी कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि मैं भगवान की कथाओं को स्पर्श कर सकूं, उनके विषय में कुछ कह सकूं। वास्तव में ये एक वक्ता का भाव होना चाहिए क्योंकि जब हम भगवान के विषय में बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम इस लायक नहीं हैं कि हम भगवान के विषय में, वास्तव में सूत गोस्वामी योग्य हैं परंतु फिर भी वे कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है क्योंकि विलोम जाता, मैं तो मिश्र जाति से हूँ। क्योंकि जो सूत गोस्वामी, उनका नाम ही सूत गोस्वामी, यानी कि उनका जो कुल था वो बहुत निम्न था, वो रोमहर्षण जी के पुत्र थे मगर वो ब्राह्मण के पुत्र नहीं थे, मगर वो ब्राह्मण और अलग यानी मिश्र जाति यानी अलग अलग जातियों के मिलने से जो संतान उत्पन्न होती है उसको संकर या फिर मिश्र जाति कहा जाता है, इसलिए उनको सूत गोस्वामी कहा जाता था। हालांकि उनका नाम उग्रश्रवा था लेकिन फिर भी वो उनको जाति के नाम से पुकारा जाता था। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं खुद से तो इस योग्य नहीं हूं कि मैं भगवान की कथाओं को बोलूं, लेकिन वृद्धानुवृत्त्यापि, वृद्धानु यानी जो बहुत बहुत ज्ञान में बड़े चढ़े भक्त हैं उनकी जब मैंने सेवा की है, सेवा माना जो भक्तजन होते हैं जो कथा सुनाते हैं उनकी सेवा कैसे की जाती है कि उनकी कथाओं को ध्यान से श्रवण करना और फिर उन कथाओं को पूरे संसार में वितरित करना, यही भगवान के भक्तों की उत्तम सेवा है। तो वे कह रहे हैं वृद्धानुवृत्त्या भी विलोम जाता, मैं भले विलोम जाती हूँ, मैं मिश्र जाती हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है लेकिन क्योंकि मैंने उन महान भक्तों की सेवा की है तो उसके कारण क्या हुआ, दौष्कुल्यमाधिम विधिनोति शीघ्रम, दौष्कुल्यमाधिम दोष जो है मेरे कुल का मेरी निम्न जाति का वो सारा दोष जो है वो शीघ्रम साफ हो गया। विधिनोति माना हम शुद्ध हो गए हैं, स्वच्छ हो गए हैं अति शीघ्र, जैसे ही उन महात्माओं के साथ मेरा संबंध हुआ। यहाँ पर वे अपने गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी के विषय में बता रहे हैं कि वैसे तो मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, निम्न जाति का व्यक्ति मैं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, लेकिन क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जैसे परम शुद्ध महात्मा का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ तो मेरे कुल का दोष शीघ्र ही समाप्त हो गया। महत्तमानम अभिनान योग, महत्तमानम महान आत्मा है वो, और उनके साथ जैसे ही मेरा संबंध हुआ तो मेरे सारे दोष समाप्त हो गए। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हम भले किसी भी छोटी जाति के हों, हमारे अंदर भले कोई योग्यता ना हो, भले हम छोटी जाति के हों, मगर जैसे ही हम शुद्ध वैष्णवों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, जब हमें कोई शुद्ध वैष्णव शिष्य रूप में स्वीकार करता है तो हमारे सारे अवगुण नाश हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भाई ये ब्राह्मण नहीं है, ये शूद्र है तो इनके साथ हमें नहीं बैठना चाहिए या इनसे कथा नहीं सुननी चाहिए, लेकिन ये भागवत इस बात की पुष्टि कर रहा है कि भले ही हमारे अंदर कितने ही अवगुण हो लेकिन यदि हम किसी शुद्ध सतगुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं और उनके द्वारा दीक्षित होकर भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं तो हम गुरु बनने के योग्य। यही बात महाप्रभु ने कहा कि भा विप्र के भा न्यासी शूद्र के ने नया, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो, भले वो विप्र हो, भले सन्यासी हो, भले शूद्र हो, कि भा विप्र भले वो विप्र हो, ब्राह्मण हो कि वह न्यासी, भले सन्यासी हो या शूद्र कहने नहीं, भले शूद्र हो, यही कृष्ण तत्व वेता। यदि वो कृष्ण को तत्व से जानता है, और कृष्ण को जानने का एक ही तरीका है कि हम शुद्ध गुरु परंपरा से जुड़ते हैं, तो यदि वो शुद्ध गुरु परंपरा से जुड़कर भगवान के तत्व को समझता है तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो वो गुरु बनने के योग्य है, चाहे वो कुछ भी हो, शूद्र भी हो, तो भी अगर वो शुद्ध भक्तों के सानिध्य को प्राप्त करता है तो वो गुरु बनने के योग्य है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन सी जाति में जन्म लिया है। ये सूत गोस्वामी जो रोम हर्षण के पुत्र हैं, वो कोई शुद्ध परिवार में या शुद्ध जाति में उत्पन्न हुए व्यक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये सारे ऋषिगण उनको गुरु स्वीकार कर रहे हैं, वो व्यास आसन पर उनको बिठा के उनसे श्रवण करने के लिए उनको बार बार मतलब विनती कर रहे हैं कि कृपया आप हमें सुनाइए। तो इससे श्रीमद् भागवतम इस सिद्धांत को बता रही है कि भले ही कोई निम्न कुल में हो, निम्न जाति में हो, लेकिन यदि वो शुद्ध भक्तों के द्वारा सीख कर हमें शास्त्र का श्रवण कराता है या ज्ञान देता है तो वो हमें स्वीकार करना चाहिए, उनका आदर वैसे ही शुद्ध भक्तों की तरह करना चाहिए, चाहे वो किसी शूद्र जन्म शूद्र कुल में ही क्यों न उसका जन्म हुआ हो। श्रील प्रभुपाद जी इस चीज को बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, वे एक मिश्र जाति के परिवार यानी विलोमज में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे, किंतु महापुरुषों की संगति से यथा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से उनके निम्न कुल के सारे अवगुण धुल चुके थे। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दो तरह से उनको महापुरुषों की संगति थी, जिनसे सुना था वो भी महान शुद्ध भक्त भगवान के सुखदेव गोस्वामी, जो कि साक्षात श्रीमती राधा रानी के सानिध्य को प्राप्त करके आए थे, और दूसरा उनसे जो सुन रहे थे वो भी सारे महर्षिगण जो नैमिषारण्य के 88। तो शुद्ध भक्तों के केवल दर्शन करने से ही हमारे अपराध नष्ट हो जाते हैं, और इनको तो सानिध्य प्राप्त हुआ था तो उनके निम्न कुल के सारे अपराध अवगुण जो थे वो नष्ट हो गए थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इस सिद्धांत का पालन करते थे, और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु इसी सिद्धांत को फॉलो करते थे, वो ये नहीं देखते थे कि कौन अच्छे कुल में जन्म लिया है या नहीं लिया है, उसके अंदर कौन से अवगुण हैं, वो सबको भक्ति का दान देते थे, भगवान के पवित्र नाम का जप करने का अवसर प्रदान करते थे और उन्हें आचार्य पद पर स्थापित कर देते। बहुत सारे ऐसे निम्न जाति के लोग भी उस समय आचार्य पद पर स्थापित हो गए थे, जैसे श्री हरिदास ठाकुर, वो मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था तो, लेकिन फिर भी उनको नाम आचार्य के पदवी प्राप्त हुई। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो हैं, वो कभी भी ये नहीं देखते थे कि किसका जन्म किस निम्न कुल में हुआ है, वो हमेशा देखते थे कि वो किस प्रकार से भक्ति में अग्रसर है। वे स्पष्ट कहते थे कोई भी मनुष्य, चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो, शूद्र हो, गृहस्थी हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान को पारंगत है तो वह आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नया, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। सूत गोस्वामी ने सुखदेव तथा व्यास देव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण तत्व यानी विज्ञान सीखा था, और वे इतने योग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भगवत भागवत के रूप में कृष्ण विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण तथा उपदेश द्वारा उन्हें महापुरुषों की संगति प्राप्त थी, यानी उन्होंने श्रवण किससे किया था, साक्षात सुखदेव गोस्वामी और वेद व्यास जी से, और वो श्रवण करा रहे थे नैमिषारण्य के मुनियों को। इस तरह श्रवण तथा उपदेश द्वारा उन्हें दोनों तरफ से महापुरुषों की संगति प्राप्त थी। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही खास बात बता रहे हैं। वे कह रहे हैं आध्यात्म या कृष्ण विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है, और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बनता है। ये परंपरा, ये श्रृंखला नहीं टूटनी चाहिए। हम स्वयं से कृष्ण विज्ञान को नहीं सीख सकते, हम स्वयं से कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रचार को नहीं कर सकते जब तक कि हम किसी शुद्ध वैष्णव के द्वारा श्रवण नहीं करते। ये श्रीमद् भागवतम श्रवण का विषय है, अध्ययन का विषय नहीं है। आपने कभी सुना कि श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करना चाहिए? नहीं ना, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अधिकृत व्यक्तियों से श्रवण किया है वही हमको अच्छे तरीके से श्रवण करा सकते हैं। और जब हम उनसे श्रवण करेंगे तो हम किसी और को श्रवण करा सकते। तो हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कोई योग्य पात्र प्राप्त हो जिससे हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर सकें। आगे कह रहे हैं इस प्रकार सूत गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे, यानी वो उन्होंने श्रवण भी शुद्ध वैष्णव से किया था और श्रवण भी करा रहे थे शुद्ध भक्तों को। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से पूर्णतया मुक्त हो गए थे। अब सारे उनके दोष जो कि निम्न कुल वाले थे वो साफ हो गए थे। और आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने ना तो सूत गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने से आध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से इनकार किया, और न ही नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से इनकार किया। इसका अर्थ यह होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को आध्यात्मिक विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अत्यंत ही सुंदर बात यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हजारों साल पहले जब अभी तक कलयुग स्टार्ट हुआ था उससे, यानी द्वापर से ये बात चली आ रही है, द्वापर युग के थे वेद व्यास जी, और उन्हीं के जीवन में ही सुखदेव गोस्वामी ने ये परीक्षित महाराज को ज्ञान दिया। और उस समय भी ये बात नहीं देखी जाती थी कि आप किस कुल में जन्म लिए हो, ये देखा जाता था कि आपने किन से सीखा है और कितना शुद्ध तरीके से भगवत प्रचार कर रहे हो, यानी कि पूरी योग्यता आपकी भक्ति, आपकी साधना और शुद्ध गुरु के सानिध्य यानी परंपरा से आने के ऊपर ही डिपेंड करता था। इस बात पे नहीं करता था कि आप किस परिवार में जन्म लेते हो। अगर ऐसा होता तो सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी को शिक्षा क्यों देते? वो तो सूत गोस्वामी को बोलते भाई मैं शूद्रों को नहीं बताता या निम्न जाति वालों को नहीं बताता, और उन्होंने चलो कृपा करके बता दिया, फिर नैमिषारण्य के ऋषि तो उन्हें मना कर देते ना, बोलते हैं भाई हम आपसे क्यों सीखे, हम लोग तो खुद किसी से कम नहीं है, हम तो सब ब्राह्मण हैं, सब ऋषि मुनि थे। लेकिन उन्होंने उनको स्वीकार किया। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहां से ये पता चलता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने के किसी को आध्यात्मिक विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबिंध नहीं था। हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों में प्रमुख हुई है, जब द्विज बंधुओं अर्थात उच्च जाति के कुल में अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई। ये सिर्फ 100 साल पहले से ये हुआ है कि इसकी जाति निम्न है, ब्राह्मण लोग दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देते, वो बोलते हम ब्राह्मण है, हमारा अधिकार है खाली प्रचार करने का। लेकिन पहले ये सब नहीं होता था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्री प्रभुपाद जी बताते कि भगवान चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया और ठाकुर हरिदास को नाम आचार्य का पद प्रदान किया। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर का जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः वैदिक सिद्धांत को स्थापित किया है।
कि वैदिक सिद्धांत में कभी भी जाति को नहीं देखा जाता था, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तब बहुत इस बात को, जातिवाद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जो ब्राह्मण होते थे उनको, शूद्रों को बहुत ज्यादा मतलब निष्कर्ष किया जाता था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने पुनः अपने वैदिक सिद्धांत को स्थापित किया। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप है, गंगा जल शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल से स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है। किंतु जहाँ तक भगवान के परम भक्तों का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं, संगति की तो बात ही दूर है। इसलिए शास्त्र कहता है, गंगार परश उले पश्चति पावन दर्शन पवित्र करो हे तुम्हारा गुण। गंगा की तो जल में स्नान करने के बाद जीव पवित्र होता है। इसे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, उनके तो दर्शन मात्र से जीव शुद्ध हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी सूत गोस्वामी को तो संगति प्राप्त हुई। संगति की क्या बात, उनके तो केवल दर्शन से ही जीव शुद्ध हो जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे, और अब यह भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में लेकर और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करें। यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी क्या, पृथ्वी त्याजयत नगराधिक्राम सर्वत्र प्रचार हुए भी मोरनाम। और चैतन्य महाप्रभु ने साफ कह दिया कि आपको कुल और जाति को नहीं देखना है, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हो। अगर कोई कृष्ण तत्ववेता है तो उसे गुरु बनकर सारे संसार में कृष्ण भावनामृत को फैलाना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु है। यहाँ मेरी आज्ञा है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि आप गुरु बन जाओ और तारा ही देश इस सारे संसार को आप तारो। जब आप किसी शुद्ध वैष्णव के सानिध्य में कृष्ण भावनामृत को समझते हो तो ये आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप इस विज्ञान को, इस ज्ञान को संसार में फैलाओ। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर है। आजकल लोगों के अंदर भले शारीरिक रोग बहुत गंभीर होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी मानसिकता ज्यादा रोगी है। मानसिक रूप से वो इतने ज्यादा रोगी हो गए हैं कि वो किसी को स्वीकार नहीं करते। इसमें ये अवगुण है, उसमें वो अवगुण है, बस जो प्राचारिक भी होते हैं ना उनके अंदर भी वो अवगुण ही ढूंढ रहे होते हैं। ये नहीं देखते कि वो कितनी गंभीरता के साथ कृष्ण प्रचार को यथा रूप में फैला रहे हैं। उसको स्वीकार करके हमें अपने जीवन को स्वच्छ बनाना चाहिए, जीवन को पवित्र बनाना चाहिए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ये नहीं देखते, बस हमारे शरीर के ही अवगुण देखते रहते हैं। लेकिन श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, गंगा खालो बुद्ध फैन पंख है, कि जिस प्रकार से यदि गंगा के अंदर कभी झाग आ जाती है या पानी जो है वो मिट्टियाला लगने लगता है, तो क्या हम ये सोचते हैं कि ये गंगा अपवित्र हो गई, हम इसमें स्नान ना करें? कभी भी ऐसे नहीं सोचते हम। फिर भी गंगा में जो शुद्ध भक्त होते हैं वो स्नान करते हैं। उसी तरह दिखने में भले शारीरिक लेवल पर शुद्ध भक्तों के अंदर कोई अवगुण दिखे, लेकिन फिर भी यदि वो शुद्ध भक्त है, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, गुरु परंपरा से जुड़कर शिक्षा दे रहा है, तो उसमें अवगुण नहीं देखने चाहिए। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव यह उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्रीमद् भागवतम के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। महत्तमानम अभिधाय का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। यहाँ पर जैसे अंतिम लाइन में बताया,
महात्तमानं अभिधान योग।
तो ये महान भक्तों के द्वारा जो वाणी श्रीमद् भगवत भागवत महापुराण है उसका उसको श्रवण करने से ही जीवों का कल्याण होगा, जीवों की शुद्धि होगी। तो बगैर किसी देर के हमें हम सबको ये कार्य करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना चाहिए। महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबंध ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम है। तो इसका मतलब ये है कि हम चाहे किसी भी स्टेज पर हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी कुल में जन्म लिया हो, हमारा कर्तव्य है कि हम शुद्ध वैष्णवों से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें और फिर संसार भर में इसकी शिक्षा देने के लिए अग्रसर हो जाए। जितनी दूर तक हमारी आवाज जाती है हमें ये भागवत भक्ति का प्रचार करना चाहिए, जिसके द्वारा समस्त जीवों का कल्याण हो सके। श्लोक नंबर 19 में सुख गोस्वामी कहते हैं, कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्ति भगवानन्तो महद्गुणत्वात् यमनन्तमाहु। कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वात् यमनन्तमाहु। कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वात् यमनन्तमाहु। कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य, जब केवल शुद्ध भक्तों के दर्शन करने से ही जीव पवित्र हो जाता है, फिर उन भक्तों का क्या कहना जो शुद्ध भक्तों से के सानिध्य को प्राप्त करने के बाद, उनसे शिक्षा लेने के बाद भगवान के पवित्र नाम का जप करना शुरू कर देते हैं। जब उनका सानिध्य ही उन्हें शुद्ध कर देता है, कुतः पुनः गृणतो नाम तस्य, फिर उनका जो भगवान का नाम लेते हैं उनकी क्या बात कहनी। महत्तम एकांत परायण सज, वो महान भक्तों के निर्देशन के अनुसार भगवत भक्ति शुरू करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप। महत्तम एकांत पराय, एकांत पराय सिर्फ और सिर्फ महान भक्तों के निर्देशन के अनुसार ही भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। तो योऽनन्त शक्तिर् भगवान अनंतो, भगवान की शक्ति भगवान के गुण सब कुछ अनंत है। महत् गुणत्वात्, तो भगवान के असीम गुणों के कारण यमनंत माहो, उन्हें असीम कहा जाता है, अनंत कहा जाता है, क्योंकि भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान की शक्ति अनंत है। उसी तरह भगवान के पवित्र नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, जब शुद्ध गुरु महाराज से उनको दीक्षा प्राप्त होती है और उनके निर्देशन के अनुसार वह भगवान के पवित्र नाम का जप करना प्रारंभ करता है, तो फिर उन भक्तों का क्या कहना जाए, कहा जाए, क्योंकि शुद्ध भक्तों का तो केवल सानिध्य ही हमें पवित्र कर देता है, और जब उनसे दीक्षा प्राप्त हो जाती है, उनके निर्देशन के अनुसार हम भगवान के पवित्र नाम का जप करना शुरू कर देते, फिर उसका क्या कहा जाए। तो यहाँ पर अनुवाद देखिए, और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है, भगवान जो शक्ति में असीम है तथा गुणों में दिव्य है, अनंत कहलाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, द्विज बंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति हैं, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों को ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। तो जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना वो बोलते हैं कि भाई ये तो निम्न जाति के हैं, इनको ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए। यहां तक कि जब श्रीला प्रभुपाल जी अमेरिका में गए थे और उन्होंने अंग्रेजों को ब्राह्मण दीक्षा दी थी, तब भी बहुत विरोध किया था कि ये श्रीला प्रभुपाल जी क्यों कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो कि ये अंग्रेज जो कि निम्न जाति के हैं उनको क्यों ये ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं, वो इस योग्य थोड़ी है। तो अलग अलग दलीलें देते थे शास्त्रों की। तो यहां श्रीला प्रभुपाल जी कहते हैं उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म तभी होता है जब कोई पूर्व जन्म में कोई पाप करता है, अतएव उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। किंतु इन मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के प्रमाण से बता रहे हैं। सूत गोस्वामी साक्षात इस बात का प्रमाण है, ज्वलंत प्रमाण है कि वो शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे, लेकिन फिर भी सारे ऋषि मुनि उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर ये यहाँ पर उनकी सारी तर्क सारी दलीलें जो है वो यहाँ पर फेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जाता है कि आप यदि किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवत भक्ति करते हो, शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हो, कुतः पुनः गृहणतो नाम तस्य महत्तम एकांत परायणस्य, शुद्ध भक्त का सानिध्य खाली तुम्हें प्राप्त हो जाए तो शुद्ध हो जाते हो, तो भला उनके सानिध्य में रहकर भगवत भक्ति करने से ना भगवान के पवित्र नाम का जप करने से आपकी कितनी शुद्धता होगी, इसके बारे में क्या कहना। तो यहां श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तुरंत ही निम्न जाति के जन्मों में के दोष से छूट जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए अपराध नहीं करता। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे भी अपराध करते रहो और नाम जप करते रहो तो आप जो है वो शुद्ध हो जाओगे, नहीं, हमें नाम जप करते वक्त अपराधों से बचना है। और भगवान के नाम कीर्तन में 10 प्रकार के अपराध होते हैं। कौन कौन से अपराध होते हैं? प्रथम अपराध, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। हमें हर दफा हर समय इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि हम कभी भी किसी की भी निंदा ना करें, क्योंकि निंदा करने से हमारी भक्ति जो है उसकी जो छोटी छोटी अभी तक कोंपले निकली हुई होती हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो जैसे एक खेत में एक हाथी पागल हाथी घुस जाता है तो उसके आने से कैसे सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह हमारी भक्ति का ये नन्हा सा पौधा निंदा करने से नष्ट हो जाता है। इसी प्रथम अपराध हमें सोचना चाहिए कि कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा अपराध, शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के नामों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। भले वो महान हैं, लेकिन उनका नाम भगवान के नाम के समान नहीं है तो उनसे स्वतंत्र कैसे हो सकता है। हमें नाम जप करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है, अनंत के, जैसे यहाँ पर बताया कि योनंत शक्तिर भगवान भगवान अनंतो, भगवान अनंत है, उनके नाम में और उनमें कोई भेद नहीं है, इसलिए भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। तीसरा अपराध, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु जो है वो साधारण मनुष्य है, लेकिन वास्तव में वो गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उनको उनकी अवज्ञा कभी भी नहीं करनी चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। जो शुद्ध गुरु होते हैं वो वही आदेश देते हैं जो शास्त्र में लिखा होता है, वो हमेशा हमें भगवत भक्ति करने के लिए ही प्रेरित करते हैं, तो उनके आदेशों का हमें अवश्य पालन करना चाहिए। नंबर 4, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। जो शास्त्र में लिखा है वो प्रमाण है, वो समझ में नहीं आ रहा है तो हम नम्रता के साथ पूछ सकते हैं कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा, बाकी उनका खंडन नहीं करना चाहिए, चैलेंजिंग मूड में कभी भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। ये महामंत्र पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनन्नत्वा नाम नामिनो, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जप तो कर रहा हूं मगर
ये सब जो इतनी महान महान बातें जप के लिए कहते हैं कि सबसे महान कार्य जो है वो जप है, पता नहीं ऐसा है या नहीं है, कभी भी काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। हमें हृदय से इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम के अतिरिक्त और हमारा कोई सहारा नहीं है। भगवान के पवित्र नाम से बढ़कर और कोई कार्य नहीं है। सबसे महान कार्य जो है वो भगवान के पवित्र नाम का जप अथवा कीर्तन है। नंबर 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। अर्थवाद नहीं करना चाहिए। भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है, कि साक्षात भगवान का स्वरूप है। नंबर 7, भगवान नाम के बल पर पाप करना। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो वैसे भी नाम जप करता हूँ और नाम जप करने से तो अपराध नष्ट हो जाते हैं, तो एक आध अपराध कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इस तरह से नाम जो है वो कभी भी हम पर कृपा नहीं करेंगे। भगवान नाम की कृपा नहीं हुई तो समझो भगवान की कृपा कभी नहीं होगी। तो नाम प्रभु का आश्रय लेकर सदैव अपराधों से बचना चाहिए, ना कि उसके बल पर हमें अपराध करना चाहिए। नंबर 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझ। ये सकाम कर्म कांड नहीं है। जब हम नाम जप कर रहे होते हैं तो ये शुद्ध पवित्र भक्ति है। भक्ति कभी सकाम कर्म कांड नहीं होती है। ये तो भगवान को प्रसन्न करने का ही एकमात्र रास्ता है, हमारे पास एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसको कभी भी सकाम कर्मकांड नहीं समझना चाहिए। नंबर 9, अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। तो उपदेश देने से पहले देखना चाहिए क्या ये योग्य है। कुछ लोग बहुत अपराध करते हैं, बहुत बड़े अपराधी होते हैं, उनको बोलो अगर भगवान के बारे में तो वो और भी 10 बातें उल्टी बता देते हैं। तो हमें अगर हम उपदेश कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है कि हम उससे नीचे मतलब गिरे हुए पतित अवस्था से ऊपर उभारना चाहते हैं, इसलिए हम उपदेश करते हैं ना। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों को उपदेश करेंगे जो वैसे ही भगवान के नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं तो हमारे वैसे वो चुप करके बैठे रहेंगे, लेकिन जब हम उनको नाम भगवान नाम की भक्ति की बात बताएंगे तो और भी अपराध करेंगे भगवान के प्रति, तो और भी पतित होंगे। तो उनके पतित होने का कारण बनने से बेहतर है तो उनको अपराध उपदेश करना ही नहीं चाहिए। जब तक उनके हृदय में थोड़ी सी श्रद्धा, खाली श्रवण करने की थोड़ी सी श्रद्धा हो, उसी को ही उपदेश करना चाहिए। अगर उनके अंदर थोड़ी सी श्रद्धा नहीं है तो पहले भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, किसी तरह से उनको भगवान के नाम किसी तरह से मतलब उनको भगवान के संपर्क में कभी दर्शन हो गया भगवान का, कभी कोई बात बता दी, या फिर उपदेश नहीं करना चाहिए लेकिन करुणा, जैसे हम खुद जो है वो भगवान के नाम का जप करें और भगवान से प्रार्थना करें, उनको प्रसाद खिलाएं, उनको पता ना हो कि भगवान का प्रसाद है, उन पर यदि हम कृपा चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि उनके हृदय में थोड़ी सी श्रद्धा उत्पन्न हो कि वो श्रवण करने के लिए तैयार हो जाएं, फिर ही उनको उपदेश करना चाहिए। आगे नंबर 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये बहुत बड़ा अपराध है जो हम सब कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान के पवित्र नाम में और भौतिक आसक्ति समाप्त तो होनी चाहिए ताकि हम भगवान के पवित्र धाम को प्राप्त कर सकें, भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सकें। और एक अपराध तो ये भी है कि हम जब जब करते हैं तो पूर्ण रूप से सावधान नहीं होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त भगवान नाम के पवित्र भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन करते हुए अपराध नहीं करता है। हमें अपराध नहीं करने चाहिए। अगर हम अपराध करते हैं तो हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। भगवान के नाम कीर्तन में 10 प्रकार के अपराध होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया कीर्तन अपराध रहित होता है और भगवान का अपराध रहित कीर्तन दिव्य होता है। अतएव ऐसे कीर्तन पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभावों को तुरंत ही दूर कर देते हैं। जब हमें किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त होता है, उनके द्वारा दीक्षित होकर उनके द्वारा हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे हृदय से अपराध समाप्त हो जाते हैं। गुरु के सानिध्य में रहकर जो हम सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, वो शुद्ध होता है और जो हमारे जन्मों के जितने भी पूर्व जन्मों के समस्त अपराध नष्ट हो जाते हैं, फिर चाहे हम किसी भी कुल में जन्म लें हम शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे अपराध रहित कानून यह सूचित करता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है और भगवान की शरण ले ली है। ये अपराध रहित कानून है कि हम शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहकर भगवान की भक्ति, भगवान के नाम को स्वीकार करें, तो इससे क्या होगा, भगवान की शरण प्राप्त करने से हम पवित्र दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ जाएंगे और आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम होने के कारण एक है। अभिन्नत्वान नाम अनामिनो, भगवान का पवित्र नाम भगवान ने भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके अनंत नाम है जो उनसे अभिन्न है और उन्हीं के समान शक्तिमान है। श्रीमद् भगवद गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में आता है उसकी समस्त पापों से सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि वे तथा उनके नाम एक है। अतएव भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों से, पापों के प्रभावों से बचा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, भगवान ने कहा है। और भगवान के नाम में तो अंतर नहीं है, तो यदि हम भगवान के पवित्र नाम का भी शरण ग्रहण कर लेंगे तो भी हमारे समस्त पापों के प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। निम्न कुल में जो हमने जन्म लिया है उसका जो भी दोष है, अगर हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, तो हमारे सारे दोष जो है वो समाप्त हो जाते हैं। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है। जैसे जैसे भक्त भगवान के बढ़ते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्तों की जो लीलाएं होती हैं, भगवान के अवतारों की जो लीलाओं का बखान होता है, भगवान की शक्ति असीम है। ऐसा नहीं है कि बस इतनी है, लिमिटेड नहीं है, प्रतिक्षण वो बढ़ती जाती है। अतएव प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं, फुल होते हैं, भगवान की शक्ति से भरे हुए होते हैं जितने भी शुद्ध भक्त होते हैं। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं होता। तो अगर हम लोगों ने निम्न कुल में जन्म लिया है, भले हम कितने भी अपराधी हैं, तो जब हम भगवान की शुद्ध लीलाओं को श्रवण करते हैं शुद्ध भक्तों के द्वारा, और शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त करके भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो सारे अपराध क्षय हो जाते हैं, जीवन शुद्ध हो जाता है, हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और हम इस योग्य हो जाते हैं कि हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकें, भगवान की शरण को प्राप्त कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद के पैसाथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। थैंक यू।